Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
ये प्रवचन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 20 पर श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला 17वां अध्याय श्लोक नंबर 20।
ओम ज्ञातमनंदस्य ज्ञानांजनाशलक्य चक्षुर्मिलितानेन तस्माय श्री गुरवे नमः।
इन श्लोकों का उच्चारण धर्मरूपी बैल कर रही है और धर्मरूपी बैल किसको उत्तर दे रही है? परीक्षित महाराज को। जैसे कि आप इस अध्याय में सुनते आ रहे हो, परीक्षित महाराज पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के, और अपने राज्य की यात्रा करने के दौरान उन्होंने देखा कि एक बैल को मार रहा था कौन? एक सुंदर व्यक्ति जिसने राजा के वस्त्र ग्रहण किए थे, और बैल भी थी और बैल के साथ थी एक गाय। बैल है धर्म रूप, धर्म ने बैल का रूप ग्रहण किया था और पृथ्वी ने गाय का रूप, और दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे शब्दों में दोनों अत्यंत दुखी थे। और जब राजा ने देखा कि उनके राज्य में इस प्रकार की घटना बीत रही है और एक दुष्ट व्यक्ति ने अपने आप को राजा के रूप या राजा के वस्त्र ग्रहण करके इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो जो परीक्षित महाराज थे इस घटना को देखकर दुखी भी हुए और उन्होंने तुरंत ही उस शूद्र व्यक्ति कली के प्रतिनिधि को आदेश दिया कि तुम्हें राज्य के बाहर जाने के लिए। दूसरे शब्दों में पिछले कई श्लोकों में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार जो राजा है या जो शासन कर रहे हैं उन्हें पूरी प्रजा की चिंता रहनी चाहिए, ये नहीं केवल जो मनुष्य जीवन में है पर जो पशु हैं उनकी भी चिंता रहनी चाहिए, और खास करके बैल का और गाय का। इन दो पशुओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम समाज में शांति चाहते हैं, समाज का परिवर्तन देखना चाहते हैं। हमारी सात माताएं मानी जाती हैं शास्त्रों में, जैसे माँ जिनके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, गुरु की पत्नी जो हमारी देखभाल करती हैं, फिर गाय, गाय को सात में से एक माँ माना जाता है, तो और बैल, बैल का होना भी बहुत आवश्यक है। बैल का क्या कर्तव्य है? खेती बाड़ी में सहयोग देना। आजकल आप क्या देखते हो, बैल जो हैं बेकार हो गए हैं। क्यों? ट्रैक्टरों के कारण। लोगों ने ट्रैक्टरों का उपयोग करना शुरू किया, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना शुरू किया, और इसके द्वारा जो बैल है वो बेकार हो गए हैं। पर अगर और बैल के साथ किसान भी बेकार हो गए हैं। अभी ट्रैक्टर वाला वगैरह के द्वारा जो काम होता है तो आपको किसानों की आवश्यकता नहीं रहती। तो और आज समाज में क्या हो रहा है, जो बेकारी है बढ़ते जा रही है। इस समय अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन हो रहा है और नंबर वन कैंपेन इश्यू है अमेरिकन लोग इतने बेकार हो रहे हैं क्योंकि नौकरियां विदेशों में जा रही हैं इनको बंद करने के लिए। तो मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते तो उसके द्वारा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, बैल से पूछा कि तुम्हारे तीन पांव किसने तोड़े हैं। वो जानना चाहते थे कौन है इस दोष का कारण। तो बैल ने ठीक उत्तर नहीं दिया। इन श्लोकों के द्वारा बैल हमें सिद्धांत दे रही है, ये सिद्धांत दे रही है कि जब हम कष्ट को भुगतते हैं तो उसके कई कारण माने जाते हैं। आज का जो श्लोक है इसे ठीक समझने के लिए जो पिछले दो श्लोक हैं उनको भी समझना पड़ेगा। पिछले दो श्लोकों में बैल ने कहा है, ये घोषित किया है कि हमारे जो कर्मों का परिणाम हम भुगतते हैं उसके कई कहते हैं ये कारण है, कोई कहता कुछ और कारण है। तो उस बैल ने कहा कि कई कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने सुख और दुख का कारण बनता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, तुम ही कारण हो सुख का दुख का, मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, मेहनत नहीं करोगे तो निकम्मे रहोगे। कई भौतिकवादी कहते हैं तुम ही कारण हो, कोई और इसके ऊपर किसी की शक्ति नहीं है, कोई भगवान नाम की शक्ति नहीं है, कोई परमात्मा नाम की शक्ति नहीं है, तुम्हारे बल पर ये निर्भर है कितना खुशी का कोटा मिलेगा और कितने दुख का कोटा मिलेगा। फिर इसके अलावा कई हैं जो कहते हैं कोई देवी शक्ति का कारण है कि भगवान की इच्छा कोई देवी शक्ति है जिसके द्वारा हमें ये निर्णय किया जाता है कितना सुख मिलना चाहिए कितना दुख मिलना चाहिए। कई कहते हैं कि ये निश्चित है कर्म पर, हमारे जो कर्म हैं वो जिम्मेदार बनते हैं हमारे सुख का और दुख का। आप समझे, बैल ने समझाया कि आप पूछ रहे हो कौन है इस कष्ट का कारण। तो बैल ने आगे कहा कि कष्ट का हम जो कष्ट वगैरह भुगतते हैं उसके कई बार कई कारण माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कई हैं जो कहते हैं कि ये कर्म ही आपके कारण है और कर्मों के आधार पर ये निश्चित किया जाता है सुख दुख। फिर कई कहते हैं जो स्पष्ट भौतिकवादी है वो कहते हैं प्रकृति कारण है हर चीज। जब उनसे कहा जाए कि सृष्टि के पीछे परम भगवान का हाथ है तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान का हाथ नहीं प्रकृति का हाथ है। कई बार प्रचार के दौरान नास्तिक व्यक्तियों से परिचय होता है तो जब उन्हें आप कहो कि गॉड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, भगवान हर चीज के कारण है, वो कहते नहीं हर चीज का उत्पादन तो प्रकृति द्वारा हो रहा है। पर इस विषय में भगवान ने गीता में क्या कहा, माया दक्षिण प्रकृति स्थित सहचरा, ये प्रकृति जो है मेरे इशारे से चल रही है। उदाहरण के लिए अन्न के उत्पादन के लिए वर्षा की आवश्यकता है। अब वर्षा या बारिश की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमें उपाय दिया है। भगवान कहते हैं बड़े स्पष्ट रूप से, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन अन्न संभव, अन्न की प्राप्ति होती है किस कारण, वर्षा। वर्षा की प्राप्ति होती है किस कारण, यज्ञ। यज्ञ क्या क्या अर्थ है, धर्म के नियमों का पालन। आप अगर धर्म के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको प्रकृति साथ नहीं देगी, बहुत साफ बात है, इसको समझना कठिन नहीं है। जैसे आज जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो भी स्वीकार करेंगे कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं तेजी के साथ कम होते जा रही हैं, तेजी के साथ। कई बार आपको ये समझाया है जो आवश्यकताएं तेजी के साथ कम होते जा रही हैं, क्यों? प्रकृति आज साथ नहीं दे रही। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कुंती देवी जी की प्रार्थना के द्वारा, कुंती देवी जी की प्रार्थना भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं, कहती है, हे भगवान, आपकी असीम कृपा और दृष्टि के कारण खेतों में अन्न का उत्पादन हो रहा है, सागर सारे पानी से भरे हुए हैं, पेड़ जो हैं फलों से भरे हुए हैं, क्यों? आपकी कृपा के कारण। तो जहां भगवान की कृपा हो वहां हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त हो जाती है। तो चार प्रकार के विचार हैं कर्मों के परिणाम के विषय में। एक है जो व्यक्ति कहता है तुम आप ही कारण हो, जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने कहा यज्ञ। किस लिए यज्ञ किया जा रहा है, किसकी खुशी के लिए? वैसे तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था किसकी खुशी के लिए। तो भगवान उनके पिता ने क्या कहा, बेटा हम किसान हैं, किसान की सफलता निर्भर रहती है वर्षा पर, वर्षा निर्भर रहेगी इंद्रिय पर। तो बेटे ने क्या, अरे भाई ये यज्ञ से क्या लेना देना, ये तो खुशी सुख दो कि आप पर निर्भर है, यज्ञ द्वारा थोड़ी आपको ज्यादा ज्यादा सुख मिल जाएगा। तो कई हैं जो कहते हैं कि आप ही कारण हो, आप ही कारण बनते हो, और कई क्या कहते हैं कि देवी शक्ति, कोई घटना बीत जाती है कहते हैं देवी, भगवान का हाथ है, देवी शक्ति है कोई, और कई ये कहते हैं क्या कि हमारे कर्म जिम्मेदार है, अगर हम सुख और दुख भुगत रहे हैं वो कर्मों के अनुसार। और चौथा विचार क्या है, चौथा विचार यह है कि प्रकृति, प्रकृति द्वारा ये निर्णय किया जा रहा है सुख और दुख। अब इन चारों में हमारे वैष्णव का क्या सिद्धांत है कि कर्मों के अनुसार सुख दुख हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई बार आप कोई दुर्घटना देखते हो समाज में, तो जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो दोष किसे देते हैं, किसे दोष देते हैं, भगवान को। कहते भगवान ने ये क्यों कराया, ये भूकंप क्यों आया गुजरात में, वहां बाढ़ क्यों आई, ये निर्दोष बच्चा जन्म लिया है उसने, क्यों उसमें ये कमी रही। कई बार लोग पूछते हैं, कहते हैं ये इस बच्चे ने तो कल ही जन्म लिया है, उसने अब तक पाप किया भी नहीं, तो जन्म में क्यों ये नुक्स रहा। कई बार आप सुनते हो ना ये सब, जन्म में ये नुक्स क्यों रहा, इसे तो पाप किया ही नहीं, पाप करे फिर सजा भुगते फिर तो अलग बात है। और वो भूल जाते हैं कि ये उनका पहला जन्म नहीं है, न जायते मृयते वा कदाचन, ये हमारा पहला जन्म नहीं। जो आत्मा है वो है सनातन, केवल शरीर नश्वर है। तो जब हम कहते भी हैं कि हमारा बच्चा 2 साल का या 1 साल का या 10 साल का है, उसका केवल ये अर्थ है कि ये जो देह है इस समय वो है 1 साल या 2 साल या 10 साल पुराना, पर ये नहीं उसका अर्थ कि हमारी असली आयु 10 साल है या 1 साल है। तो कर्मों के अनुसार ये निर्णय किया जाता है सुख और दुख, और हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं। इस विषय में भी भगवत में उपदेश है, खास करके आज अमिल की कथा में यहाँ की ये घोषित किया गया है कि हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं, जैसे कि सूर्य चंद्रमा अग्नि के देवता वायु के देवता और परमात्मा। आज के श्लोक के लगभग पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने परमात्मा के विषय में चर्चा की है। और प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक बड़े प्रसिद्ध श्लोक के विषय में प्रभुपाद जी ने समझाया है. कौन सा था वो श्लोक? वो 15वां अध्याय का 15वां श्लोक. भगवान कहते हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपहानम च. तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि, मैं हूँ स्मरण और अपहानम का कारण. स्मरण का अर्थ है भगवान को याद करना, अपहानम का अर्थ है भगवान को भूलना. तो दोनों की शक्ति कहाँ से आती है? परम भगवान के द्वारा. भगवान ही हमें ये योग्यता देते हैं उनका स्मरण करने की, और वही हमें योग्यता देते हैं उन्हें भूलने के लिए. तो ये स्मरण और अपहानम की शक्ति भगवान द्वारा ही प्राप्त होती है. इस दृष्टि से कि भगवान ने हर व्यक्ति को छूट दी हुई है. छूट यह है कि हम निर्णय कर सकते हैं कितनी मात्रा में हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, और हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमने भगवान के शरणागत होना है या नहीं. जैसे उदाहरण के लिए कि जब भगवान देखते हैं, भगवान तो हर के हृदय में अंतर्यामी है परमात्मा के रूप में, और परमात्मा के रूप में जब देखते हैं कि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, तो भगवान उसी प्रकार की बुद्धि देते हैं. जैसे कि आज के वातावरण में भगवान को भूलना बहुत ही सरल बन गया है, बहुत ही सरल. आज तो आप घर बैठे बैठे पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो आप घर बैठे बैठे आप हर जगह की यात्रा कर सकते हो, सिनेमा देख सकते हो, गंदी तस्वीरें देख सकते हो, क्रिकेट मैच खेल सकते हो कंप्यूटर में, गोल्फ खेल सकते हो कंप्यूटर में. आज अगर देखा जाए भगवान को भूलना बहुत सरल बन गया है. तो परमात्मा हमें बुद्धि देते हैं इच्छा के अनुसार, और परमात्मा के बिना, की इजाजत के बिना किसी कार्य में भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि हर कार्य जो किया जाता है उसके 5 मूल कारण बनते हैं. पहला है कर्म का स्थान. तो कर्म का स्थान क्या है? शरीर. ये जो देह है ये बनता है कर्म का स्थान. तो कर्म का स्थान है शरीर या बॉडी. फिर उसके अलावा विभिन्न इंद्रियां. भगवान ने अनेक इंद्रियां दिए, हर व्यक्ति के 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं. फिर वो इंद्रियां जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, फिर इंद्रियां का जो उद्देश्य है. तो जो विभिन्न इंद्रियां हैं वो भी कारण बनती हैं हर कार्य के लिए. उसके अलावा प्रत्येक अनेक प्रकार की चेष्टा करोगे तो ही आप उम्मीद कर सकते हो सफलता प्राप्त करोगे. और 5वां कारण क्या बनता है? परमात्मा. परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो पाता. जैसे इंग्लिश में कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. भगवान व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है और भगवान निर्णय करते हैं कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. डिस्पोजेस वो भगवान निर्णय करते हैं, ये नहीं कि. तो 5 कारण हैं. अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो आप कितना भी हाथ लगाओ सफलता प्राप्त नहीं होती. तो हर कार्य के पीछे 5 कारण है. एक है कर्म का स्थान, दूसरा है कर्ता, फिर है विभिन्न इंद्रियां, और फिर है अनेक प्रकार की चेष्टा। कई बार आप देखते हो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत प्रयास करता है, पर इतना प्रयास करने के बाद भी बहुत प्रयास करता है इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त होती है नहीं होती। कई बार आप देखते हो और प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं गीता के तात्पर्य में, बहुत बीमार व्यक्ति बच जाता है और हल्की बीमारी से कोई इसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार आप देखते हो कि एक्सीडेंट होता है, एक सवारी बच जाती है, एक सवारी घायल हो जाती है, कई बार कोई और दुर्घटना भी जाती है। तो परमात्मा की इजाजत के बिना कुछ नहीं हो पाता। तो यहां महाराज परीक्षित धर्म रूपी बैल से पूछ रहे हैं, अरे भाई किसने तोड़े हैं तुम्हारे पांव, बताओ किसने तोड़े हैं। तो बैल नहीं उतर दे रही, वो ये नहीं कह रही कि ये है कारण। बैल सोच रही है कई कारण है, तो अगर मुझे कष्ट भुगतना है तो भगवान की इच्छा तो भुगतने। तो प्रभु जी समझाते हैं कि ये जो कष्ट बैल ने सहा था, इसके ये असल में इच्छा थी भगवान की, क्या कि ये स्थापित किया जाए कि जो राजा है उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर भागवतम के द्वारा हमें शिक्षा मिल रही है हर महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और अगर आज के आधुनिक युग के जो नेता हैं इन उदाहरणों को पढ़ें और इसका लाभ उठाएं, तो फिर ठीक शासन हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इस घटना के द्वारा परम भगवान ये स्थापित करना चाहते थे परीक्षित महाराज के उदाहरण के द्वारा कि क्या होनी चाहिए हमारी जिम्मेदारी, नेता की शासक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज के विषय में एक रूप से देखा जाए तो परीक्षित महाराज को इस परिस्थिति में डाला था, क्यों कि भागवत का उपदेश देने का अवसर प्राप्त हो। वैसे तो परीक्षित महाराज की सुरक्षा भगवान ने की थी परमात्मा के रूप में, जब वो माता के गर्भ में थे, है कि नहीं, माता के गर्भ में थे जबकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और भगवान ने स्वयं उनकी सुरक्षा की। और परीक्षित महाराज जब माता के घर में थे उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ, और जब ये दर्शन प्राप्त हुआ एक पल के लिए, छोटे से समय के लिए, उन्हें इतना आनंद अनुभव हुआ कि जिंदगी भर वो उस तस्वीर की खोज में थे। और जब भी किसी व्यक्ति को भी मिलते थे, किसी के चेहरे को देखते थे, सबसे पहले ये देखते थे क्या इनका चेहरा क्या मिलता जुलता है किस चेहरे के साथ, जिस चेहरे का दर्शन मैंने माता के घर में लिया था। उन्होंने दर्शन लिया था परम भगवान का, तो 24 घंटे निरंतर वो एक रूप से भगवान के चेहरे का स्मरण कर रहे थे, और उनकी याददाश्त इतनी गहरी थी कि जो दर्शन उन्होंने प्राप्त किया था माता के घर में एक छोटे से पल के लिए, वो तस्वीर मिटी नहीं उनके चेहरे से। तो जैसे परीक्षित महाराज का सदा स्मरण था भगवान के स्वरूप के विषय में, हम भक्तों का भी प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करें। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कारो माँ में वाचरी सत्यम ते प्रति जने प्रयोश में, सदा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो और मेरी शरण में आओ, मेरा भक्त बनो, और अगर तुम इन कार्यों का पालन करोगे तो बिना शंका के तो मेरे धाम में लौटोगे। तो परीक्षित महाराज को, इसी परीक्षित महाराज को इस ब्राह्मण ने श्राप दिया। और अगर परीक्षित महाराज चाहते तो इस श्राप का विरोध कर सकते थे, आखिर उन्होंने गलती नहीं की थी। एक रूप से देखा जाए वो राजा थे, और जब वो किसी आश्रम में गए तो उनका कर्तव्य बनता था कि अतिथि की स्वागत की जाए। वैसे कहा गया है कि अगर कोई दुश्मन भी आपके घर में आए तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप लोगों का स्वागत करो और उन्हें प्रसाद खिलाओ। सबसे पहला अच्छा तरीका है उनको प्रसाद खिलाओ। अगर प्रसाद नहीं खिला सकते तो उन्हें बिठाकर क्या दो, जल तो दो। और अगर जल भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों से तो स्वागत करो। कम से कम बैठने के लिए आसन तो दो। प्रभा जी की हार्दिक इच्छा थी, मानो या ना मानो, कि हर व्यक्ति जो इस्कॉन के केंद्र में आता है उसे बिठाकर गरम प्रसाद खिलाया जाए। बिठाकर, अभी तो हम खिचड़ी खिलाते हैं तो अच्छा है। तो प्रभा जी की इच्छा थी खास करके वृंदावन और मायापुर में एक बड़ा कमरा हो जहाँ की लोगों को बिठाकर गरम गरम प्रसाद खिलाया जाए और मुफ्त में। प्रभा जी की इच्छा थी, और उन्होंने हमें कई बार कहा कि जो व्यक्ति भी मंदिर में आए उसे प्रसाद ग्रहण के बिना किसी हालत में नहीं निकलना चाहिए, उसे जरूर प्रसाद देना चाहिए, एक बार नहीं 50 दफा। तो सबसे बेहतर है आप उन्हें प्रसाद दो। प्रसाद नहीं दे सकते तो मीठे शब्दों से स्वागत करना चाहिए। सो परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, तो जब उस आश्रम में पहुंचे श्रृंगी के पिता के समीप ऋषि के, उनका स्वागत तो करना चाहिए था, पर वो भी उन्होंने भी स्वागत नहीं किया, वो भगवान के चिंतन में जुड़े हुए थे। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये जो दुर्घटना बीती है इसके द्वारा भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि जो देश का नेता है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है, उसका किस प्रकार का विचार होना चाहिए, उसे चिंता रहनी चाहिए पूरी प्रजा की सुरक्षा के लिए। आज की स्थिति में सरकार जब कानून बनाती है, किन के लिए कानून बनाती है? सिर्फ मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए कानून नहीं बनाती है। पशुओं के साथ जो करना है कर लो, कुछ अपराध नहीं। कई लोग शिकार करने जाते हैं और कई लोग पशुओं को अनेक और प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं, और जो सरकार है वो खुद कत्ल खाने खोल रही है। आजकल भारत की सरकार भी कत्ल खाने खोल रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कत्ल खाना खोला हुआ है, सरकार ने खोला हुआ, ये नहीं कि दूसरों को इजाजत दी, सरकार खुद कत्ल खाने खोल रही है। एक तरफ से सरकार कानून बनाती है गाय माता, क्योंकि हमारी माता मानी जाती है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी तरफ से ऐसे कानून बने हैं कि अगर आप गाय को कत्ल खाने में भेजना चाहो तो भेज भी सकते हो, है ना? आप अंदाजा लगाओ, हरियाणा पंजाब की गायों को वो भेजते हैं बांग्लादेश में। अभी हरियाणा बंगा पंजाब बांग्लादेश के पड़ोस में तो नहीं है। उन गायों को कितनी ले जाना पड़ता है, हरियाणा पंजाब दिल्ली यूपी का बांग्लादेश फिर कलकत्ता और फिर वहाँ से बांग्लादेश। तो थोड़ी देर पहले में, कोई एक दो तीन महीने पहले हमने पढ़ा था कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि जो हिंदुस्तान की गायों को बांग्लादेश में भेजा जा रहा है कत्ल होने के लिए, हमें एक बड़ा कत्ल खाना बंगाल में ही खोल लेते हैं, तो इन गायों को कत्ल वहाँ नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में कत्ल होंगे और फॉरेन एक्सचेंज पर बचेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का ये सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ यहाँ कत्ल कर देते हैं, बांग्लादेश में कत्ल मत करो। तो ये है समाज की दुर्घटना। तो हमें इस संदेश का प्रचार करना है, और जो बैल है बड़ी सहनशील थी, तो कर्मों के अनुसार ये निर्णय किया जाता है किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। इस विषय की चर्चा भागवतम के तीसरे स्कंध में भी की जाती है, जहाँ की देवहूति ने अनेक प्रश्न पूछे थे अपने पुत्र किससे, कपिल। वैसे इतिहास में दो कपिल देव हुए हैं, एक है ढोंगी और एक है असली। तो ये कपिल देव थे देवहूति के पुत्र। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने ये किताब छापी थी टीचिंग द लॉर्ड कपिला, तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा टीचिंग लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति, जो देवहूति के पुत्र थे। क्योंकि कई बार लोग दूसरे कपिल देव की चर्चा करते हैं। तो कपिला देव से माता ने अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये पूछा था कि ये बताओ कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। माता ने कहा कि माता को पता था कि मेरा जो बेटा है ये स्वयं भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सूचना उन्हें दे दी थी। और माता ने कहा तुम एक खिलाड़ी हो जिसके द्वारा मेरा जो आकर्षण है भौतिक आकर्षण ये टूट सकता है। दूसरे शब्दों में गुरु या भगवान के शुद्ध भक्तों के सहयोग से ही जो हमारा भौतिक आकर्षण है वो टूट सकता है। तो माता ने बेटे से अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये था कि बताओ कैसे मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बेटे ने कहा कि भक्ति योग के माध्यम के द्वारा। फिर उन्होंने पूछा कि भक्ति योग प्राप्त कैसे होता है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को कहो कि भक्ति योग स्वीकार करो, भक्ति योग स्वीकार करो, तो लोग आपसे पूछेंगे भक्ति योग प्राप्त कैसे होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा बेटे ने, भक्ति योग प्राप्त होता है साधु संगत के द्वारा। और इस विषय का प्रमाण शास्त्र में है, शास्त्र में भी कहा गया है साधु संगत सर्वशास्त्र का। सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, साधु संगत का नाम उठा। तो बेटे ने कहा कि ये भक्ति प्राप्त होती है साधु संगत के द्वारा। फिर माता ने एक और प्रश्न पूछा, ये पूछा कि ये बताइए साधु की पहचान क्या है। तो उन्होंने आगे पूछा कि साधु की पहचान क्या है, साधु को कैसे पहचाना जाए, साधु के क्या लक्षण होने चाहिए, साधु में क्या गुण होने चाहिए, साधु की पहचान क्या है। तो उसके उत्तर में क्या कहा उन्होंने, तितिक्षवा करुणिका सूरदा सर्वधीनम अजित सत्व संता साधवा साधु मोक्षना। जैसे कि भौतिकवादी व्यक्ति अपने आप को सजाते हैं गहनों के साथ, अच्छे वस्त्रों के साथ, है ना। आजकल आप जहाँ भी जाओ आपको इम्पोर्टेड वस्त्रों की दुकानें दिखती हैं, है ना। तो लोग सजाना चाहते हैं अपने आप को अच्छे वस्त्रों के साथ या गहनों के साथ। तो जो साधु हैं, कि साधु को अपने आप को सजाना चाहिए इन गुणों के द्वारा, या दूसरे शब्दों में ये गुण प्राप्त होने चाहिए किसमें, साधु में। और क्या क्या कहा भगवान ने, तितिक्षवा करुणिका, तितिक्षवा का अर्थ है उसे सहनशील होना चाहिए। देखिए बैल कितनी सहनशील है। करुणिका दया की भावना होनी चाहिए। देखिए सूरदा सर्वदहीनम, जो भगवान के भक्त हैं वो सबके मित्र हैं। सूरदम सर्वदहीनम, उनका कोई शत्रु नहीं। वैसे बहुत एक समाज में हम सोचते हैं ये शत्रु है ये मित्र है, भगवान के जो भक्त हैं वो सबको ही मित्र मानते हैं। जब प्रहलाद महाराज जी के पिता उन्हें राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे, राजनीतिक शिक्षा का क्या अर्थ, इसे दो मित्र मानो इसे शत्रु मानो, प्रहलाद ने कहा स्पष्ट, मेरा कोई शत्रु नहीं, सभी क्या है मेरे, सभी मेरे मित्र, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं। तो सूरदास सर्वा धैनम, यहां आप देख रहे हो कि कली ने बैल के तीन पैरों को तोड़ा है, पर वो से शत्रु नहीं मान रही, वो ये नहीं कह रही ये कारण है। तो भक्त जो है सूरदास सर्वा धैनम अजता शत्रवा शांता, उसे उसके पास शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रों पर आधारित व्यवहार होना चाहिए। फिर आगे माता ने पूछा, अच्छा ये बताओ ये कैसे निर्णय किया जाएगा कि किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा, ये कैसे निर्णय किया जाता है कि हमारा भविष्य किस सिद्धांत पर, यह निर्णय किया जाएगा कि आपका कौन सा ध्येय प्राप्त होगा। कोई ना कोई सिद्धांत तो होना चाहिए। हमने जैसे कहा था चार प्रकार के अलग सिद्धांत हैं। कई तो कहते हैं कि आपके ऊपर ही निर्भर है सुख और दुख, कई कहते हैं क्या कर्मों पर निर्भर है, कई कहते हैं प्रकृति द्वारा, और कई कहते हैं कोई देवी शक्ति है जिसके द्वारा। तो उनकी माता ने पूछा ये बताओ कि कैसे निर्णय किया जाएगा, क्योंकि जब आप प्रचार भी करते हो और जब आप ये स्थापित करते हो कि आत्मा सनातन है श्री नश्वर है, लोग पूछते हैं ना, पूछते हैं ये बताओ कैसे निर्णय किया जाएगा। उसके उत्तर में भगवान कपिला देव ने क्या कहा, कारमाना देवा नेत्रेना जंतु देहो पपते स्त्रिया प्रविष्ट उदान पूम सोरेता कनश्रया, कि हमारे कर्मों के आधार पर कर्मों के कई साक्षी बनते हैं और इन कई साक्षियों में एक है परमात्मा। तो परमात्मा द्वारा ये निर्णय किया जाता है सुख और दुख। अब प्रभुपाद जी एक और विषय की स्थापना करते हैं, भक्त जो है हर परिस्थिति में यही सोचता है कि भगवान जो करते भी हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, और अगर उसे कुछ सफलता प्राप्त हो तब तो भक्त क्या कहता है, भगवान की असीम कृपा से ये सफलता मुझे प्राप्त हो रही है। भौतिकवादी जब सफलता प्राप्त करता है तो क्या कहता है, हमारे प्रयास से हमारे परिश्रम से। जैसे कि जब किसी साल अगर वर्षा अच्छी आ जाए और अन्न का उत्पादन अच्छा हो, तो राजनीतिक नेता ये नहीं कहते कि इंद्र जी या कृष्ण जी की कृपा से अच्छी वर्षा प्राप्त हुई तो अन्न का उत्पादन हुआ, कहेंगे हमारा अच्छा शासन था जिसके कारण वर्षा आई और ये अन्न का उत्पादन, ठीक है ना। और अगर मान लो बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए, फिर कहेंगे क्या करें, प्रकृति का, प्रकृति हमारे हाथ में थोड़ी है। तो भक्त जो है अगर कुछ सफलता प्राप्त हो तो इसका आभार प्रकट करता है भगवान को और वैष्णव को गुरु को। जैसे कि जब भी भक्त जन प्रभुपाद जी से कहते थे कि आपने इतना कार्य किया, इतना विशाल कार्य किया, आपकी कृपा से ये संस्था चल रही है, प्रभुपाद जी ने मेरे ख्याल से कभी नहीं ये स्वीकार किया कि उनके प्रयास से कोई सफलता प्राप्त हो रही है। प्रभुपाद जी यही कहते थे कि मेरे में एक ही गुण था, वो गुण ये था कि मैंने अपने गुरु महाराज के आदेश को गंभीरता से स्वीकार किया और उसका पालन करने का प्रयास किया और उस कारण ये सफलता प्राप्त हो रही है। और अगर किसी कारण भक्त को कठिनाई भी सहनी पड़े तो क्या सोचता है, भगवान कर्मों के अनुसार मुझे और हजार गुना ज्यादा कष्ट भुगतना चाहिए था, पर भगवान की असीम कृपा से जो कष्ट मैं भुगत रहा हूं बहुत कम। जैसे कि पुराणों में कथा है एक राजा की और प्रधानमंत्री की। एक समय एक राजा की दो उंगलियां कट गई थी, तो राजा का प्रधानमंत्री जो था बड़ा धार्मिक था, उसे कठोर विश्वास था भगवान की असीम शक्ति में। तब राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री को कहा कि मेरी दो उंगलियां कट गई, क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने हंसकर कहा, भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो राजा को जब क्रोध आया, राजा ने कहा ये मेरे से सिंपथाइज करने के बजाय मेरी हंसी उड़ा रहा है, कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा ने गुस्सा होकर जेल में भिजवा दिया अपने प्रधानमंत्री का। वो जैसे आप जानते हो राजाओं को शिकार का शौक रहता है, तो जब ये शिकार करने निकले ये राजा, तो उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया। वो डाकुओं ने पकड़ कर ये योजना बनाई कि उन्हें एक देवी कली को भेंट करना चाहिए। आप भागवतम के पांचवें स्कंद में पढ़ते हो जद भारत की कथा। जद भारत पूर्व जन्म में महाराज भारत थे। एक समय वो खेती बाड़ी की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था और सौतेली माँ ने और सौतेली भाइयों ने उनकी चिंता नहीं की। उन्हें कहा जाओ खेती की देखभाल करो, चौकीदारी करो। वो चौकीदारी कर रहे थे तो एक दिन डाकू ने उन्हें छुड़ा लिया। वो डाकू ने निर्णय किया कि हमने इसे अर्पण करना है देवी काली के चरणों में, भोग लगाना है इनका। कई दुष्ट बुद्धि के व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं। तो उन्होंने जद भारत की उसको मसाज किया, जैसे आप लोग फल जब भगवान को भोग लगाते हो खाने से पहले धोते हो ना, तो ये जो दुष्ट बुद्धि के व्यक्ति उनका भी सिद्धांत है। तो उनका ये सिद्धांत है पहले शरीर को साफ करो, धुलाओ, फिर उसे मसाज करो, फिर अच्छे वस्त्र पहनाओ, फिर बलि से भोग लगाओ। तो जद भारत की ये तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पहले मसाज किया, सब किया, फिर जैसे भोग जैसे बलि से काटने गए तो उसी देवी की मूर्ति से वो बाहर निकली और उसी तलवार से डाकों को उन्होंने काट दिया। तो राजा गए थे शिकार करने, तो उन्हें डाकू ने पकड़ लिया। राजा ने और राज्य डाकुओं के जो नेता था, जद भारत के विषय में डाकुओं की इच्छा थी कि जद भारत जैसा व्यक्ति अर्पण किया जाए, क्योंकि उनके गुरु जो थे, डाकुओं के भी गुरु होते हैं तो उनके जो गुरु थे, नेता जो थे, उनको खास वर चाहिए था। तो ये डाकू ने राजा को जब चुरा लिया, किडनैप किया, तो राजा को इनकी इच्छा थी कि कली के चरणों में अर्पण किया जाए। तो जैसे जद भारत की तैयारी की थी, ये राजा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पहले तो स्नान करवाया, फिर राजा को मसाज दिया। पर मसाज देते देते उन्होंने देखा कि ऐ दो ही उंगलियां इसकी कटी हुई हैं। तो उन्होंने कहा छोड़ दो इसको, हम कली के चरणों में भेंट के रूप में अर्पण नहीं कर सकते। राजा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि जो मेरे प्रधानमंत्री ने कहा ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं भक्ति भलाई के लिए करते हैं, अगर मेरी दो उंगली नहीं कटी होती तो आज मुझे बस काट देते पूरा। तो राजा बहुत खुश हुआ और खुश होकर वो लौटा अपने महल में। पूरी सब मंत्रियों को उन्होंने ये सूचना दी और मंत्रियों को आदेश दिया कि तुरंत ही छोड़ दो। किसे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को छोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री को राजा ने पूरी कथा सुनाई और कहा कि आपके जो आपने कहा ठीक है, भगवान जो करते हैं भक्त की भलाई के लिए करते हैं। फिर राजा ने कहा कि एक चीज बताइए, आपके भगवान में की शक्ति में इतना कट्टर विश्वास है, भगवान ने मेरे द्वारा आपको जेल में क्यों भिजवाया? ये तो मैं मानता हूं कि दो उंगलियां कट गई थी, पर जेल में आप मेरे द्वारा मुझे माध्यम बनाया भगवान ने कि आपको जेल में भेजा जाए, क्या कारण था? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मूर्ख हो, आप ये नहीं समझते कि अगर आप मुझे जेल में नहीं भेजते तो मैं भी आपके साथ ज्यादा शिकार करने, और जैसे आप पकड़े गए तो मैं भी पकड़वाया, मुझे भी पकड़ लेते और मेरे शरीर के सारे अंग पूरे हैं। तो अगर मुझे जेल में भगवान नहीं भिजवाते तो आज मेरा कत्ल हो जाता। तो मुझे जेल में भिजवा कर उस दुर्घटना से भगवान ने बचाया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो भक्त है उसका उसकी पूरी श्रद्धा रहती है भगवान की कृपा पर, और अगर भक्त को प्रयास करने के कारण भी अगर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं भी हो तो घबराता नहीं है। जैसे हमने कहा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में 5 कारण दिए गए हैं किसी कार्य के सफलता के लिए। 5वां कारण क्या बनता है? परमात्मा। आप बेशक अधिक प्रयास करो पर अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करोगे तो कितना भी आप प्रयास कर लो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए चलो परमात्मा ने सब निर्णय करना है तो हम प्रयास क्यों करें। परमात्मा की इच्छा होगी तो खुद ही खुद हो जाएगा, है कि नहीं? और परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। हम क्यों ऐसे अपनी बुद्धि लगाएं और इतना मेहनत करें? हो गया, भगवान कहते हैं चेष्टा करना पड़ेगा। चेष्टा करना पड़ेगा किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। कर्म का स्थान, कर्म का स्थान तो शरीर है, फिर विभिन्न इंद्रियां भी हैं। जो चेष्टा करोगे तो ही हम निर्भर रह सकते हैं भगवान की कृपा पर। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। जब भगवान देखते हैं कि कोई स्वयं प्रयास कर रहा है तो भगवान उनका सहयोग देते हैं। आप प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए, प्रभुपाद जी को लगभग 20-25 सालों के लिए संघर्ष करना पड़ा। सफलता प्राप्त हुई पर कब? 70 साल की आयु में। प्रभुपाद जी ने तो घर छोड़ दिया था 1952 में, फिर आ गए थे राधा दामोदर मंदिर रहने के लिए। उससे पहले थे झांसी में, इस समय झांसी में हमारा केंद्र है। तो झांसी में प्रभुपाद जी ने एक बिल्डिंग ली थी और वहाँ लीग ऑफ डिवोटी संस्था की स्थापना की थी, और वहाँ ही प्रभुपाद जी ने योजना बना ली थी पूरे विश्व में कृष्णा प्रचार करने के लिए, झांसी में ही। वो लीग ऑफ डिवोटी बिल्डिंग ले ली थी प्रभुपाद जी ने, फिर पता लगा कि किसी राजनीतिक नेता को बिल्डिंग चाहिए औरतों के क्लब के लिए तो वो भी हाथ से फिसल गई। फिर प्रभुपाद जी आए वृंदावन में, फिर वृंदावन से बकायदा आते थे दिल्ली में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत चेष्टा करनी पड़ी और अधिक चेष्टा के पश्चात अंत में सफलता प्राप्त हुई। ये जो भगवद गीता का अनुवाद है ये भी 2 दफा प्रभुपाद जी ने किया है। पहली दफा प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद किया था तात्पर्य के साथ जब वो कलकत्ता में विराजमान थे, पर उस समय उनके पास कोई धन नहीं था इस भगवद गीता को प्रकाशित करने के लिए। तो बहुत कठिनाई से प्रचार के दौरान जब वो मद्रास में थे उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, जिसने पूरा वादा भी नहीं किया, उसने केवल ये कहा ठीक है मुझे आपका मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ, मैं सहयोग देने का प्रयास करूँगा। तो प्रभुपाद जी जब वापस कलकत्ता में गए वो मैन्युस्क्रिप्ट लाने के लिए, इस व्यक्ति को दिखाने के लिए, क्योंकि उस वक्त प्रभुपाद जी के पास धन की कमी थी। तो प्रभुपाद जी जब वापस कलकत्ता गए तो उन्हें क्या पता लगा कि घर में रद्दी के रूप में वो कागज बेच दिया है। वो जैसे आप पुरानी अखबार वगैरह को बेचते हो ना, तो रद्दी के रूप में वो मैन्युस्क्रिप्ट होगी कोई 2-3-4 हज़ार पेजेस की, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हाथ से लिखा। तो जब 800 पेज की गीता है छपी हुई तो हाथ से लिखी होगी 4-5 हज़ार पेजेस की। तो वहाँ उन्हें पता लगा कि वो पूरी रद्दी के रूप में सब कागज बेच दिया है। फिर प्रभुपाद जी ने फिर से चेष्टा किया ना, फिर से प्रयास किया इस गीता का अनुवाद करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चेष्टा के बिना परमात्मा सफलता भी नहीं देते। आप चेष्टा करोगे, जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, फिर ही परमात्मा के द्वारा आप सफलता की उम्मीद कर सकते हो। अगर हम चेष्टा करें बिना ये उम्मीद करें कि सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो एक रूप से हम भगवान पर बोझा बन रहे हैं। और जो भक्त है वो किसी प्रकार से भगवान पर बोझा नहीं बनना चाहता। जैसे कि एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके शायद 13वें दिवस पर एक कथा मैंने कही थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े तपस्वी थे, राधा कुंड में बैठकर भजन करते थे, हालांकि मौसम इतना गर्म था। और एक समय राधा रानी जी उनके पीछे खड़े हो गई थी साड़ी के दुपट्टे को लेकर छाता के रूप में। तो सनातन गोस्वामी जी ने देख लिया इस घटना को। और एक और समय एक शेर था बिल्कुल पास, फिर भगवान स्वयं वहां खड़े हुए अपने भक्त की सुरक्षा के लिए। सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये तो भाई राधा रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी धूप में तपस्या करके जाप तो कर रहे हैं, पर वो भगवान से सेवा ले रहे हैं। तो उन्होंने डांटा, तुम तो भगवान से सेवा ले रहे हो भाई। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी के कहने पर भजन कुटीर बनाई। उसी प्रकार जब रूपा गोस्वामी एक दिन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई ने बड़े अच्छा भंडारा का प्रबंध किया है, खीर वगैरह। तो उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव हो गया, हम तो वैसे सूखी रोटी और नमक खाते थे, आज तो बहुत बड़ा भंडारा बना दिया है आपने। तो उन्होंने कथा सुनाई कैसे ये सब संभव हुआ। एक खूबसूरत लड़की आई थी, इससे जवान लड़की, जिसने ये सब भेंट दी, कहा कि बनाओ मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो रूपा गोस्वामी समझ गया कि वो लड़की कौन थी। तो उन्होंने डांटा भाई को, तुमने भगवान से सेवा कैसे ले ली, तुमने तो भगवान से सेवा ले ली। फिर आप माधवेंद्रपुरी की कथा पढ़ते हो कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी तो उसके बाद बड़े थक गए थे, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो एक बड़ा खूबसूरत ग्वाला आया जिसने उन्हें क्या दूध दिया पीने के। पर जब सपने में ये स्थापित हुआ कि वह स्वयं भगवान थे जिसने ये दूध दिया, तो माधवेंद्रपुरी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से सेवा कैसे ले ली। तो हम भक्तों का ये प्रयास नहीं रहना चाहिए भगवान हमारी सेवा करें। हम चेष्टा करेंगे किसी क्षेत्र में, फिर परमात्मा द्वारा ये उम्मीद कर सकते हो कि सफलता प्राप्त होने की संभावना है। पर अगर हम चेष्टा नहीं करें और सोचें कि सब परमात्मा करेंगे, अब तो हम हरि नाम का भजन ही करेंगे बस। भजन करना तो सबसे बेहतर सेवा है, भजन के साथ चेष्टा भी करना पड़ेगा अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए। तो संक्षेप में इन श्लोकों में बैल जो है परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रही है। और बैल ने कहा है, बड़ा सिद्धांत दे रही है बैल, ये कह रही है कि हमारे कर्मों के कई कारण होते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं वो हर स्थिति में भगवान पर निर्भर रहते हैं, और परमात्मा जो है वो हर एक के हृदय में उपस्थित हैं, वो हमें बुद्धि भी दे रहे हैं और अपोहानम भूलने की शक्ति भी दे रहे हैं। हरे कृष्ण।